हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda Radha, Gokula Nanda Radhe. Jai Gauranitaye Jaya, Gauranitaye Jaya, Gauranitaye Jaya, Gauranitaye. Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Shtotra Sata Histivayan Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Kukulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitaye Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Shri Snan Yatra Mahotsav Ki Jai Nitaye Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Svapadantikam वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ज्येष्ठा पूर्णिमा की तिथि पर हर साल श्री जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है और जहाँ भी भगवान जगन्नाथ के विग्रह हैं उस स्थान में भी इसी तिथि पर ये स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। विशेष करके इस उत्सव का प्रारंभ तो जगन्नाथपुरी में ही हुआ प्राचीन काल में, लेकिन स्नान यात्रा से जो हमारे मन में चित्र आता है कि भगवान का स्नान होता है या अभिषेक होता है, ये तो बहुत सही है, अवश्य भगवान का अभिषेक या स्नान होता है, परंतु ये दिन भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन है। दूसरे शब्दों में इसी दिवस पर भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे। अब हम सब तो जानते हैं कि वैसे तो भगवान का कोई जन्मदिन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अजन्मे हैं, शाश्वत है, नित्य है, फिर भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकट होते हैं हमारे भौतिक सृष्टि में और यहाँ प्रकट होकर लीला करते हैं। इसलिए जिस दिन पर भगवान यहाँ प्रकट होते हैं उस दिन को उनका जन्मदिन कहते हैं, हालांकि वास्तव में उनका तो जन्मदिन नहीं है। तो उसी तरह से जगन्नाथ भगवान जिस दिन प्रकट हुए थे तो उस दिन को उनका जन्मदिन माना जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो फिर श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्र महीने में अष्टमी तिथि में हुआ था, तो फिर आज के दिवस पर कैसे उनका जन्मदिन हुआ यदि भगवान जगन्नाथ कृष्ण ही हैं? हाँ, भगवान कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, फिर भी भगवान जगन्नाथ का रूप बड़ा विशेष है और इस विशेष रूप में प्रकट होने के लिए जो जन्मदिन था, वो प्राकट्य दिन था, वो ये है। तो जिस दिन पर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए वो आज का दिन है, आज की तिथि ज्येष्ठा पूर्णिमा। वैसे बताया जाता है कि एक बार द्वारका के निवासी, विशेष करके भगवान कृष्ण की रानियां, वो भगवान कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं को सुनना चाहते थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के निवासियों को बहुत चाहते थे। वृंदावन का प्रेम अन्य स्थानों के प्रेम से बहुत विशेष माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और ये क्यों है? क्योंकि जो वृंदावन के प्रेम में एक निकटता है, एक मधुरता है, वो अन्य स्थानों में नहीं है। हालांकि मथुरा, द्वारका आदि में भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त अवश्य हैं और शुद्ध प्रेम से वो भगवान की सेवा करते हैं और लीलाएं उनके साथ में करते हैं, फिर भी इन अन्य स्थानों में उनके भक्ति भावना में एक ऐश्वर्य की मिलावट होती है। इसलिए जो मिठास वृंदावन के भक्ति में है वो अन्य स्थानों में नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण द्वारका आने के बाद भी अपने वृंदावन के दिनों को याद करते रहते थे। आपको तो पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण 10-11 साल के आयु में वृंदावन छोड़कर मथुरा आए और फिर 28 साल के आयु में मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। लेकिन मथुरा और द्वारका आने के बाद भी वृंदावन के भक्तों की याद उनको आती रही, और जब वो द्वारका में थे इतना ऐश्वर्य में रहते थे और उनके 16,108 पटरानियां थीं। ऐसा ऐश्वर्य द्वारका में था जो कि स्वर्गलोक में भी नहीं पाया जाता था। स्वर्गलोक के निवासी भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने हरेक रानी के लिए एक बड़ा बड़ा महल बनाया था जिसमें अद्भुत ऐश्वर्य था। तो ऐसे ऐश्वर्य युक्त सेवा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की हो रही थी, और ऐसे होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी वृंदावन की इतनी याद आती थी कि वो अपने नींद में भी कभी कभी वृंदावन गोपी ऐसे करके चिल्लाते थे, या कभी गोपों के नाम लेते थे, कभी गोपियों के नाम लेते थे, कभी अपने माता यशोदा और पिता नंद महाराज का नाम लेते थे, कभी गौओं का नाम लेते थे नींद में। तो ऐसे जब रानियां देखती थी कि हम इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं श्री कृष्ण के, हमारे पति के, ऐसे किसी भी चीज का अभाव यहाँ पे नहीं है, फिर भी ऐसे वातावरण में रहते हुए भी वो द्वारका, वो वृंदावन को भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या विशेषता है जो वृंदावन के भक्ति में थी जो हमारे यहाँ नहीं है? हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से लीलाएं किए होंगे वहां पे, और प्रेम का आदान प्रदान वृंदावन के भक्तों के साथ भगवान कृष्ण ने कैसे किया होगा, वो हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। तो वृंदावन के रानियों के मन में ये तीव्र इच्छा रही, और उस समय उन्होंने देखा कि अरे सौभाग्य से अभी रोहिणी देवी जो बलराम की माता है वो भी यहाँ पे हमारे साथ में द्वारका में है, तो क्यों नहीं उनसे पूछा जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि हम रोहिणी देवी से सारी बातें सुनेंगे। लेकिन रोहिणी देवी ने कहा कि मैं उस समय ही बता सकती हूँ जबकि श्री कृष्ण और श्री बलराम यहाँ पे साथ में उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इस कहानी को सुनेंगे तो यहाँ तुरंत छोड़ के वो वृंदावन चले जाएंगे। तो यहाँ उनकी अनुपस्थिति में ही मैं ये कथाएं सुना सकती हूँ। तो रानियां राह देख रही थी कि ऐसे कब संभव हो सकेगा। तो एक दिन जब श्री कृष्ण और श्री बलराम सुधर्मा सभागृह में गए थे, जो हमारे सांसद भवन के मंत्रालय सच आदि के समान है, तो उस समय रानियों ने मौका देखा तो सीधे सारे रानियां रोहिणी देवी के पास में गईं और कहा कि अब ये अच्छा मौका है, अभी आप हमें ये कथा सुनाइए वृंदावन की। तो रोहिणी देवी ने उनको बिठाया एक पूरे सभागृह में, और वहां पे बैठ के रोहिणी देवी ने कथा शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने कहा सुभद्रा देवी से कि आपको यहाँ दरवाजे पे खड़ा होना है और खड़ा होके आप खड़े होकर आपको ये देखना है कि श्री कृष्ण और बलराम अंदर नहीं आए हैं, उनको रोक देना चाहिए। तो सुभद्रा देवी वहां पर खड़ी हो गई और खड़े होकर दोनों हाथ ऐसे दरवाजे में खड़े होकर खड़ी हो गई ताकि कोई अंदर नहीं आए। तो रोहिणी देवी ने फिर वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया और वर्णन करती गई, समय बीतता गया और सारी रानियां जो इन कथाओं को सुन रही थी वो इतनी मग्न हो गईं कि उनको पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया है। उधर सुभद्रा देवी भी ये कथा सुन रही थी। आपको मालूम है सुभद्रा देवी तो द्वारका में रहती थी, वो तो वृंदावन में नहीं रहती थी, तो उनको भी सुनना था। तो सुभद्रा देवी ने भी सुन ली सारी कथाएं और सुभद्रा देवी ने हाथ ऐसे पकड़ के जो द्वार के ऊपर दरवाजे के खंभों के ऊपर हाथ ऐसे पकड़ के खड़ी थी और ऐसे भाव विभोर हो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन है, आसपास में कृष्ण बलराम आके खड़े हो गए। अब कृष्ण बलराम सुधर्मा सभागृह में थे लेकिन वो तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता है। उनको पता चला कि अभी हमारी माता, बलराम की माता रोहिणी देवी अब वृंदावन की कथाएं कर रही हैं, तो हमें तो तुरंत जाना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। तो वो जल्दी से निकल पड़े सभागृह से, कोई ना कोई बहाना बना के सीधे वहां पे चले आए जहां कथा हो रही थी। देखा कि सुभद्रा देवी हाथ यूं खड़े करके खड़ी हैं बाहर करके, तो अंदर नहीं जा पाए। तो वो सुभद्रा देवी के पास में खड़े हो गए और एक तरफ जगन्नाथ और एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ बलराम। और सुभद्रा देवी को पता नहीं चला और कृष्ण बलराम भी अपनी ही लीलाओं की कथा रोहिणी देवी के मुख से सुनते गए। उन्हें भी पता नहीं चला कि समय कैसे बीत गया है। और इन कथाओं को सुनते सुनते सुभद्रा देवी, कृष्ण और बलराम तीनों के तीनों ही भाव विभोर पूरी तरह से हो गए और ऐसे भाव विभोर हो गए कि ये सारे भाव के लक्षण उनके दिव्य शरीर में प्रकट होने लगे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगीं, उनके रोंगटे खड़े होने लगे और उनके हाथ जो है वो अंदर अपने शरीर में चले गए। और ऐसे काफी समय तक वो जब खड़े थे इस तरह, अंदर बैठे हुए रानियों ने तो ये सब देखा ही नहीं क्योंकि वो अपनी तरह से वो भाव विभोर हो गए थे कथा सुनते सुनते। उधर नारद मुनि आ गए। नारद मुनि जैसे उस सभागृह के दरवाजे पर आ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण, सुभद्रा देवी और बलराम बाहर खड़े हैं और अंदर रोहिणी देवी कथा कर रही हैं रानियों के लिए। लेकिन ये रूप जब नारद मुनि ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और वो भी प्रेमावेश में आके नृत्य करने लगे। और नारद मुनि के नृत्य करने के हुंकार आदि से, कीर्तन आदि से बलराम, कृष्ण, सुभद्रा का ध्यान जो है वो भंग हो गया। तो उनका ध्यान खुल गया, वो देखे कि अरे नारद जी यहाँ खड़े हैं। तो नारद जी बड़े आनंद से कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के चरणों में प्रार्थना करके कहने लगे कि ये बहुत ही सुंदर रूप आपका है, इतना विशेष रूप है जो कि आपने स्वीकार किया है महाभाव के समय। महाभाव मतलब बहुत ही विशेष उच्चतम भाव, इसको महाभाव कहते हैं। तो ये महाभाव का प्रकाश आप कर रहे थे और उस समय आपका रूप जो है ऐसा हो गया, हाथ अंदर चले गए, पैर भी अंदर चले गए, आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। तो ये आपका महाभाव प्रकाश, ये जो विशेष रूप है, कृपया इसे आप कहीं प्रकट कीजिए, ताकि इस भौतिक जगत के जो निवासी हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो आपके इस विशेष रूप का दर्शन पूरी तरह से कर सके। तो फिर भगवान कृष्ण ने, बलराम ने, सुभद्रा देवी ने कहा, तथास्तु, हम अवश्य ऐसे रूप में कभी प्रकट होंगे। और वैसे ये जगन्नाथ जी का रूप है जो भगवान कृष्ण ने ऐसे विरह में स्वीकार किया, वृंदावन के विरह में स्वीकार किया, वो जगन्नाथ जी का रूप है। तो ऐसे स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में बताया जाता है कि बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो मालवा देश पर राज्य करते थे और उनकी राजधानी थी अवंती, अवंतीपुर, जो आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे वो राज्य करते करते सारे प्रजा को संतुष्ट रख रहे थे। वो वैसे भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपने राजपुरोहित से प्रश्न पूछा भरी सभा में कि मैं ऐसे तीर्थ स्थान में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं भगवान को आमने सामने देख सकूँ। भगवान का दर्शन यूं ही आमने सामने हो, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ। तो जितने भी यहाँ साधु महात्मा हैं, जितने भी तीर्थ यात्री हैं, उन सबको बुलाइए और उनको पूछिए कि क्या ऐसे कोई तीर्थ स्थान है जहाँ हम जाके प्रत्यक्ष रूप से साक्षात भगवान का दर्शन आमने सामने कर सकें। तो राजपुरोहित ने राज्य के जितने भी संत महात्मा आदि थे उन सबको बुलाया और राजा की इच्छा को प्रकट किया। तो एक साधु थे, उन्होंने कहा कि मैं समस्त तीर्थ यात्रों में भ्रमण कर चुका हूँ, तो हे राजन, आप परम वैष्णव हैं, आप भगवान कृष्ण के निष्ठावान और शुद्ध भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इस स्थान में अवश्य जाना चाहिए जो कि नीलाचल के नाम से जाना जाता है शास्त्रों में। और ये महानदी जो नदी है उसके दक्षिण भाग में और समुद्र के उत्तर भाग में है, और वहाँ इस सारे क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। जब भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम या माधव के रूप में या जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं, तो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है नीलाचल, और इसकी एक ओर एक वट वृक्ष है जिसके नीचे जाने मात्र से व्यक्ति की सारे पापों का क्षय हो जाता है, और इसके पास में ही एक कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। और ऐसे बताया जाता है कि एक बार एक कौवा यहाँ से ऊपर उड़ते उड़ते उसने पानी का स्पर्श किया इस कुंड का, और ब्रह्मा जी के देखते देखते ये कौवे का रूप एक चतुर्भुज वैकुंठ निवासी के रूप में बदल गया, आध्यात्मिक रूप, और ये व्यक्ति फिर आकाशपथ से होकर वैकुंठ धाम चला गया। और उसके पास में ही एक आश्रम है, शबर आश्रम, दीपक शबर, और उस आश्रम के पास में एक गुफा है। इस गुफे में वो भगवान विराजमान हैं जिनका दर्शन करके आप भाव विभोर हो जाओगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो राजा ने और अन्य उपस्थित वहाँ संत साधुओं ने और मंत्रियों ने आदि ये वर्णन जब सुना तो उनकी सबकी बहुत इच्छा हुई कि अवश्य हमें किसी को वहां भेजना चाहिए। तो राजपुरोहित के छोटे भाई विद्यापति को भेजा गया वहां। तुरंत विद्यापति रथ के ऊपर सवार होकर अनेकों को साथ में लेकर वो निकल पड़े अवंतीपुर से और चल पड़े पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर। अंत में वो पहुंचे और फिर एक आम्रकानन, जो आज भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, इस जगह में आ पहुंचे। और फिर दूर से उन्होंने नीलाचल का पर्वत देखा, नीलाद्री, और वहां पे आके धीरे धीरे से, कथा तो बहुत लंबी है और ये कथा आपने कई बार सुन भी चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में संक्षेप में बताएंगे कि किसी न किसी तरह से विद्यापति वहां पहुंच ही गए। और पहुंचकर उन्होंने रोहिणी कुंड का दर्शन किया और वहां पे आके उन्होंने उस आश्रम का को भी देखा और एक शबर या विश्वावसु का दर्शन किया। विश्वावसु वो व्यक्ति थे जो शबर कुल में जन्म होने के बावजूद वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो भगवान के उस विशेष विग्रह की सेवा किया करते थे। तो विद्यापति ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा इंद्रद्युम्न का एक दूत हूँ और मैं यहाँ भगवान का दर्शन करने आया हूँ और राजा को जानकारी देने आया हूँ, क्योंकि भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं, भगवान राजा भी दर्शन करना चाहते हैं भगवान का। तो विश्वावसु शबर ने कहा कि हाँ, एक लोक कथा हमारे समाज में है कि एक दिन इंद्रद्युम्न नाम का राजा यहाँ पे आएगा और जब वो यहाँ आएगा उसके थोड़े समय पहले हमारे नील माधव भगवान, जो अब यहाँ पास में विराजमान हैं, वो अदृश्य हो जाएंगे और इसके बाद कभी भी दिखेंगे नहीं। ये सुनकर विद्यापति को बड़ा धक्का लग गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा मेरा कर्तव्य मुझे करना है। विश्वावसु उनको ले गए और नील माधव का दर्शन उन्होंने किया। 80 उंगली ऊंचाई थी उनकी और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए इंद्रनील मणिमय विग्रह था। इंद्रनील मणियों से बना हुआ वो विग्रह था, अति सुंदर दिखने में, और साक्षात भगवान थे। तो काफी समय विद्यापति वहां रह के उन्होंने दर्शन किया और बाद में जब आए तो विश्वावसु ने उनको महाप्रसाद का सेवन करवाया और इतने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन, अलग अलग तरह के व्यंजन, तो विद्यापति को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है, ये सब कहाँ से आया, आपने ये सारे सामग्रियां लाई कहाँ से। तो विश्वावसु ने कहा कि प्रतिदिन यहाँ पर इंद्र आदि देव आके भगवान नील माधव की उपासना करते हैं और वो भोग रखते हैं भगवान के सामने, तो इसलिए जो महाप्रसाद रह जाता है हम इसका सेवन करते हैं। तो फिर विद्यापति ने उस रात को अविश्राम किया वहां पे और विश्राम करके फिर वहां से निकल पड़े शीघ्र। और जैसे ही वो अवंती पहुंचे, राजा ने उनके दो शब्द स्वागत के भी नहीं किए, सीधे पूछ, देखो दिखाई दिए, मिले, इतने आतुर थे वो भगवान के दर्शन के लिए, जानकारी के लिए, कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि यात्रा ठीक ठाक हुई कि नहीं, या पहले किसी को मिलते हैं ये सब बातें करते हैं ना पहले। लेकिन राजा इतने आतुर थे भगवान के दर्शन के लिए कि सीधे बात पर पहुंचे। तो फिर विद्यापति ने सारी कथाएं बताई और विचित्र बात देखिए, अद्भुत बात है, राजा इतने अच्छे भक्त थे, विशेष भक्त थे, उन्होंने अपने राज्य को ही, पूरे राज्य को राज को उठाया और सारे प्रजा मंत्री, उनके रानियां सब उनके साथ में चली नीलाचल की ओर। आजकल हमारे एक घर हमें ले जाना पड़ता है तो कितना सामान मान, टीवी फ्रिज, कितना कुछ ले जाना पड़ता है, वॉशिंग मशीन, न जाने कितने चीजें आजकल घर में होती है, तो याद कीजिए, अगर एक राजधानी ही यहाँ से, एक राज्य ही एक जगह से दूसरी जगह जाए तो कितना कष्ट होगा। लेकिन उस समय में लोगों का जीवन सरल हुआ करता था, तो इसलिए सभी लोगों ने बड़े आसानी से अपने अपने घर के सामान आदि सब उठाया और सब ऊंट पर, घोड़ों पर, बैलगाड़ियों में आदि बैठ के राजा के साथ वो सब चल पड़े। तो वहाँ पे आखिर में पहुँचे, लेकिन जब पहुँचे और वहाँ पे बसे तो उन्होंने देखा कि अब भगवान विराजमान नहीं हैं। कटक के राजा जो थे, राजा इंद्रद्युम्न को पहले ही मिलने के लिए आए और उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी तूफान आ गई है जिसके कारण जो बालू है, रेती है, वो सब जगह भर गया, इसलिए अभी हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमारे राज्य में भी एक उत्पात हो गया है, अकाल पड़ गया है अभी। तो राजा इंद्रद्युम्न ने सुना तो उनको बहुत कष्ट हुआ। उस समय नारद जी भी प्रकट हुए और इसके बाद में कोई और घटनाएं हुई। नरसिंह देव भगवान के सामने ले आए नारद मुनि उनको और कहा कि यहाँ आपके 1000 अश्वमेध यज्ञ आप संपन्न कीजिए। उधर राजा के स्वप्न में, नारद मुनि के भी स्वप्न में भगवान आए, उन्होंने कहा कि हम एक दारू के रूप में, एक वृक्ष के लकड़ी के रूप में हम प्रकट हो जाएंगे इस स्थान पर, इस तिथि पर, इस समय, और इस दारू के ऐसे ऐसे चिन्ह रहेंगे, इससे आप पहचान पाओगे वो मुझसे अभिन्न है, तो उस दारू से मेरा विग्रह बनवाना चाहिए। और फिर जैसे भगवान ने बतलाया था उसी समय वो दारू मिल गया। दारू मतलब बड़ी लकड़ी होती है, वृक्ष। और फिर प्रश्न ये उठा कि कौन विग्रह बनाएगा, स्थापति कौन होंगे। तो उस समय एक वृद्ध व्यक्ति आ गए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं अवश्य विग्रह बनाऊंगा, परंतु कोई अंदर नहीं आए, कोई कुछ पूछे नहीं कि विग्रह हुए या नहीं हुए और क्यों नहीं हुआ, कोई प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आप दरवाज़ा खोलकर अंदर आएंगे तो जैसे विग्रह अवस्था, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहेंगे। तो ऐसे समय बीतता गया। ऐसे बताया जाता है कि वो स्थापति साक्षात विश्वकर्म थे, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। पास में तरह तरह के संगीत के वाद्य बज रहे थे। काफी समय बीत गया, लेकिन अंत में जब वो स्थापति अदृश्य हो गए तो उन्होंने देखा कि भगवान की जो मूर्तियां थीं वो ऐसी थी मानो कि वो अधूरी हैं, परंतु वो अधूरी नहीं थी। वास्तव में भगवान इसी रूप में प्रकट होना चाहते थे। तो जो रूप नारद जी ने देखा था द्वारका में, वही रूप भगवान ने ऐसे प्रकट किया। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये तो अनेक सतयुग पहले की बात है और द्वारका की कथा तो अभी 5000 साल पहले की बात है, तो कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं केवल एक बार नहीं होती हैं, वो हर भगवान के, ब्रह्मा जी के कल्प में, दिवस में एक बार होती हैं। इसलिए तो बहुत निरंतर भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं समय समय पर। तो फिर भगवान ने ये भी घोषणा की देवताओं को कि देखो, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा जब देवतागण उनके पास आए कि देखिए मैं आपको एक ऐसी गोपनीय बात बताना चाहता हूँ जो कोई जानते नहीं है, पहली बार मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ, और वो ये है कि नीलाचल में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे, परंतु ये रूप जो नील माधव का है मेरे पहले 50 वर्षों में केवल भगवान रूप धारण करेंगे। ब्रह्मा जी की जो आयु होती है उसको द्विपरार्ध कहते हैं, दो परार्ध, ब्रह्मा जी के पहले 50 साल और फिर ब्रह्मा जी के बाद वाले 50 साल। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि पहले मेरे 50 सालों में भगवान यहाँ पर नीलाचल में नील माधव के रूप में निवास करेंगे, विराजमान रहेंगे, और बाद वाले 50 साल में वो जगन्नाथ भगवान बन के रहेंगे। तो मेरे 50 साल अब समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब नील माधव अदृश्य हो गए, अब उनकी जगह में अब जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए हैं। एक रूप अभी चार रूप में प्रकट हुए, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र या बलदेव, सुभद्रा देवी और सुदर्शन चक्र। तो ये चार विग्रहमय रूपों में वही नील माधव भगवान अब प्रकट हुए हैं। और वास्तव में ये नीलाचल क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो इस स्थान का विनाश नहीं होता है। आपने मार्कंडेय ऋषि के बारे में अवश्य सुना होगा कि मार्कंडेय ऋषि जब प्रलय जल में तैर रहे थे, उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, उस समय उन्होंने एक प्रलय जल के भीतर एक द्वीप देखा। उस द्वीप के ऊपर एक वटवृक्ष था और उसके नीचे एक कमल पत्र था, जिस पत्र के ऊपर एक छोटा सा बालक शिशु अपने अंगूठे को चूसते हुए शयन कर रहा था। और उसके बाद बहुत सुंदर लीला हुई। मार्कंडेय ऋषि ने इस बच्चे को देखा, बड़े आकर्षित हो गए। उस बच्चे ने सांस ले ली और मार्कंडेय ऋषि उनके शरीर के अंदर चले गए। उनके शरीर के अंदर मार्कंडेय ऋषि ने सारे ब्रह्मांडों का दर्शन किया और फिर से सांस बाहर ली तो मार्कंडेय ऋषि बाहर प्रलय जल में आ गए। और उस समय उनको समझ में आया कि जिस बच्चे का दर्शन उन्होंने किया है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि है। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि ये जो स्थान तुमने देखा है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है और सृष्टि का विनाश जब होता है इस स्थान का विनाश नहीं होता है, तो प्रलय के बाद में भी ये स्थान रहता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी बता रहे थे कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है ये प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए मेरे 50 साल बीत गए, 50 सालों में भगवान ब्रह्मा जी के कितने दिन हैं? हर एक साल में 360 दिन होते हैं ब्रह्मा जी के, और 360 गुना 50, इतने ब्रह्मा जी के दिन बीत गए। और हर एक दिन के बाद एक प्रलय होता है और बीच में भी छोटे छोटे प्रलय होते रहते हैं, परंतु इन समस्त प्रलयों के बाद भी पुरुषोत्तम क्षेत्र का विनाश नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि वही भगवान जो पहले नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे वो आज जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से जिस दिन नीलाचल के निवासियों के सामने, इंद्रदुम्न महाराज इत्यादि के सामने भगवान नील माधव जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए, वो आज का दिन है। ये ज्येष्ठा पूर्णिमा की तिथि पर ही ये हुआ था। तो नारद मुनि की जो इच्छा थी वो पूर्ण कर दी भगवान ने, और भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा ये महाभाव प्रकाश को स्वीकार करके बड़ी कृपा करके हम सबको दर्शन देते हैं। तो स्नान यात्रा का दिन उनका जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है, और इंद्रदुम्न महाराज ने भी बड़े धूमधाम से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मनाया। स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ पुरोहित बने, सारे देवता भी वहाँ आए और स्नान अभिषेक भी वहाँ हुआ। जगन्नाथपुरी में भी इसी दिवस पर सुबह भगवान के विग्रहों को बाहर ले लाया जाता है और बाहर आके एक महावेदी एक मंच के ऊपर विराजमान कराया जाता है और फिर शीतल जल से उनको नहलाया जाता है और इसको अभिषेक कहते हैं। जैसे आप जानते हैं थोड़ी देर में हम ऐसा ही अभिषेक करने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं भगवान का, पूरे विग्रह का। और ऐसे काफी समय तक अभिषेक चलता है, अनेक कलश जल भर के, शीतल जल भर के अभिषेक किया जाता है। और फिर ऐसे कहा जाता है कि इतने शीतल जल के स्नान के बाद जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, उनको थोड़ा बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है और थोड़े आराम की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद 15 दिन आज के बाद वो दर्शन नहीं देते हैं और वो एकांत स्थान में रहते हैं। जगन्नाथ जी, कहा जाता है कि वो लक्ष्मी देवी के साथ में स्वकीय रस का आदान प्रदान करते हैं। स्वकीय रस मतलब जो द्वारका का रस है, विवाहित रूप में जो भगवान रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ, वो स्वकीय रस कहलाता है। और जो वृंदावन में गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उसे परकीय रस कहते हैं। तो इस दौरान, इस 15 दिन में भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं, इसलिए इस 15 दिन के अवधि को अनवसर कहते हैं या निभृत, एक एकांत स्थान में भगवान रहते हैं। और स्वयं भगवान के इच्छा के अनुसार इस अवधि में, इन 15 दिनों में, जो हमेशा के जो पंडे होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो सेवा करते हैं भगवान की, वो अब सेवा नहीं करते हैं। इन 15 दिनों के लिए वो विश्वावसु शबर विश्वावसु के जो वंशज हैं, जिनको दयित कहते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं, तरह तरह के फल आदि खिलाते हैं, उनको फल के रस आदि पिलाते हैं, उसमें जड़ी बूटी आदि मिलाते हैं, औषधि होती हैं जिससे कि उनकी बीमारी जल्दी से ठीक हो सके। और इसके बाद 15 दिन 14 दिन हो जाते हैं। 14 दिन होने के बाद 14 दिन के सुबह एक उत्सव होता है, नेत्र यौवनम। तो उस समय नेत्रोत्सव के समय भगवान की आंखें को रंग दिया जाता है और उस समय भगवान पहली बार फिर दर्शन देते हैं। और उसके बाद जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। और इन 15 दिनों में वास्तव में भगवान जगन्नाथ को नया रंग लगाया जाता है, क्योंकि अभिषेक करने के कारण वह रंग तो निकल जाता है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी के ऊपर जो रंग लगाया जाता है, वो कोई रासायनिक रंग आदि नहीं है, वो केवल जो कंदमूल जड़ी बूटियों से आदि बनाए हुए, वनस्पतियों से आदि बनाए हुए सब रंग होते हैं। तो पानी डालने से वो निकल जाता है रंग, तो दोबारा वो रंग डालना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और फिर 15 दिन के बाद भगवान बड़े ताज़े और नए लगते हैं। उस समय रथ यात्रा में जब उनका दर्शन होता है तो बड़े प्रकाशमान दिखते हैं, वैसे भी प्रकाशमान होते हैं कि विशेष करके स्नान यात्रा के बाद और भी ऐसे उनका सुंदर दर्शन होता है। तो स्नान यात्रा का उत्सव हम इस दिन पे इसलिए मनाते हैं क्योंकि तिथि के अनुसार आज के दिन मनाना चाहिए। वैसे रथ यात्रा भी रथ यात्रा की तिथि पे ही मनाई जानी चाहिए, परंतु हमारे संस्था में जगन्नाथ भगवान के विग्रह विश्व भर में हैं और हर देश में, हर प्रांत में परिस्थिति, मौसम आदि अलग अलग होते हैं। कई देशों में सरकार अनुमति नहीं देती है रथ यात्रा निकालने के लिए, एक दूसरे समय को, विशेष समय को देती है, तो उनको उसी समय निकालना पड़ता है रथ यात्रा। हमारे संस्था में कई जगह अलग अलग समय पर रथ यात्रा निकालते हैं, परंतु उद्देश्य वही है। भगवान जगन्नाथ बाहर निकलते हैं अपना दर्शन सभी को देने के लिए, कृपा बरसाने के लिए, और कई मंदिरों में भी स्नान यात्रा का उत्सव इसी तिथि पे मनाते हैं, और कई थोड़े मंदिरों में जब वो रथ यात्रा मनाते हैं तो उसके 15 दिन पहले वो मनाते हैं। तो आज का दिन बहुत आनंद का दिन है। तो अब 2-5 मिनट में हम पीछे की ओर जाएंगे और वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी के अभिषेक के सुंदर अनुष्ठान में हम शामिल होंगे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री स्नान यात्रा महोत्सव की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। श्री सुभद्रा देवी की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है क्या?